मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे दो विषयों पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। एक विषय है ग्लेशियर का और दूसरा है स्वास्थ्य के संबंध में एक रिपोर्ट आई है उसको लेकर। तो शुरुआत करते हैं ग्लेशियर से। जो हिमालयीन क्षेत्र है हमारा, या कह लीजिए कि पूरा का पूरा जब हम उत्तर भारत प्राकृतिक विभाजन करते हैं तो उसमें एक भाग आता है आपका हिमालय का क्षेत्र। याद रखिए कि परीक्षा की दृष्टि से यह जो हिमालय का क्षेत्र है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। ग्लेशियर का संबंध कहां से है? मैं भारतीय ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, हिमालयन के क्षेत्र से है, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अभी अभी तो आपने सुना है और पढ़ा भी है कि बकायदे क्लाइमेट चेंज को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मौलिक अधिकार बना दिया है, राइट? और ग्लेशियर का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से है, इसलिए हमारे लिए और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लेशियर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में मैं बातें करने नहीं जा रहा हूं। मैं बेसिकली एक हाल में ही आई रिपोर्ट से आपको अवगत कराना चाहता हूं, इस विषय पर आपको अपडेट करना चाहता हूं, जो आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिला सकेंगे और आपको इस विषय पर एम्पावर्ड भी कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक डिवीजन है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन, और हिमालय पर्यावरण एक्सपर्ट की एक टीम, इन दोनों ने अभी एक रिपोर्ट तैयार की है एक साल के अध्ययन के बाद। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, वो रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की लगभग 28,000, सोच करके देखिए, 28,000 ऐसी झीलें हैं जो ग्लेशियर से बनी हुई, जिन्हें हम कहते हैं ग्लेशियर झील। ये जो टोटल 28,043 जो ग्लेशियर झीलें हैं, इनमें से 188 झीलें, 188 झीलें कभी भी बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। हालांकि सुनने पर आपको लगेगा कि 28,000 में 188 कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये झीलें बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। आपको याद हो, यदि 2023 में पिछले ही साल सिक्किम में एक ग्लेशियर की जो झील फटी थी लहोनक, और उसके फटने से जो तबाही मची थी, लगभग 250 लोगों की मृत्यु हुई थी और 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया था एक झील के फटने से। और यहां हम कितने झीलों के बारे में बात कर रहे हैं? 188 झीलें। देखिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में यहां केवल दो राज्यों की चर्चा की गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए जिन झीलों को लेकर के हम यहां बातें कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, वे हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, राइट? और बाकी जो राज्य हैं, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो सब आप हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं ही हमारे, आप जानते ही हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है? ज्यादा गर्मी हो रही है, बर्फ किससे पिघलती है? गर्मी से पिघलती है, बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से हो क्या रहा है? जो ग्लेशियर है वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जब कमजोर पड़ते जा रहे हैं, गर्मी की वजह से भी ग्लेशियर बहेंगे और साथ ही साथ ग्लेशियर कमजोर पड़ जाएंगे तो पता लगा कि टूट टूट कर ग्लेशियर बह रहे हैं। ये पूरा का पूरा पानी कहाँ आएगा? पूरा का पूरा पानी झीलों में आएगा, और केवल झीलों में पानी ही नहीं आएगा बल्कि वो अपने साथ वो मलबा वगैरह बहा करके भी लाएंगे। और जब झील इनके पानी की मात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो वो फट जाएंगे। और बकायदे इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो कहा गया है टाइम बम जैसी फटेंगी, मतलब आपको पता नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे तबाही मच गई, अचानक ही क्या हो गया, टाइम बम जैसी फटेंगी। सोच करके देखिए। तो अब इसका उपाय क्या हो सकता है? इसके केवल दो उपाय हो सकते हैं जो इसी टीम ने बताया है। पहला तो यह है कि इन झीलों में ड्रिल करके पानी को नियंत्रित तरीके से निकाला जाए। ड्रिल करके इसका मतलब है कि उसे पंचर कर दिया जाए, छेद किया जाए झील के अंदर ही अंदर कहीं, ताकि उसका पानी धीरे धीरे बह करके निकल जाए। या फिर दूसरा ये होता है कि अंडरग्राउंड टनल बना करके, कोई अंदर ही अंदर सुरंग बना करके पानी को दूसरे क्षेत्रों की तरफ मोड़ दिया जाए, ताकि इन झीलों में जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा इकट्ठी न हो पाए। क्योंकि अगर पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया तो सीधी सी बात है कि वो टाइम बम जैसे फट सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तो खासकर आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं नोट कर लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बस दो राज्यों की झीलों को सबसे ज्यादा खतरा है, 188 झीलें हैं और इन्हें ए कैटेगरी की झील में रखा गया, यानी कि जो सबसे संवेदनशील झीलें हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य खर्च को लेकर। इस रिपोर्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अखबारों में हो सकता है कि आपको कभी कभी एक शब्द पढ़ने को मिले OOPE, ओ यानी कि आउट, ओ यानी कि ऑफ, पी यानी पॉकेट, ई यानी एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या है, यानी कि वह खर्च जो आप अपने पॉकेट से करते हैं, तो क्या बाकी खर्च आप कहां से करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार खर्च करती है, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र। आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, सरकारी अस्पताल में, तो वहां सरकार उसका इलाज करती है। तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि सरकारी अस्पताल में हम भर्ती हो गए हैं तो जो सारा खर्च है अब सरकार उठाएगी, हमारे पॉकेट से कुछ नहीं लगेगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। आपको अपने पॉकेट से भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं। आप जब सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो पता लगेगा, डॉक्टर कहेगा कि आप ये दवाई मंगवा लीजिए बाहर से, आपको दवाई बाहर से मंगानी पड़ती है, ये टेस्ट करा लीजिए, अस्पताल में उस टेस्ट की सुविधा नहीं है तो वो टेस्ट आप बाहर से करा रहे हैं, रहने का भी आपको कुछ खर्च देना पड़ रहा है। तो ये जो खर्च है आपके पॉकेट से हो रहे हैं, ठीक है, दूसरे खर्च आप नहीं दे रहे लेकिन ये खर्च तो आपके पॉकेट से हो रहे हैं। इसे कहते हैं हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अभी ये जो रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, उसके अनुसार जो एक भारतीय है वो अपने पॉकेट से अपने स्वास्थ्य पर लगभग 48% खर्च करता है, यानी कि 50% मोटे तौर पर कह लीजिए। मान लीजिए कि वो बीमार हुआ और ₹10,000 टोटल खर्च होना था तो बाकी तो सरकार ने दे दिया लेकिन ₹5,000 उसे अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ रहा है, जबकि विश्व में जो इसका औसत है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का वो लगभग 18% का है। आप सोच करके देखिए, दुनिया में 18% है और हमारे यहाँ यह लगभग 48% है। तो जो हमें अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम ये होते हैं कि फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कि लगभग 5.5 करोड़ भारतीय हर साल गरीबी रेखा की सीमा तक पहुंच जाते हैं। ले देकर के किसी तरह से वो गरीबी रेखा की सीमा से ऊपर आए थे लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो खर्च करना पड़ा फिर से उस खर्च ने उन्हें गरीबी रेखा की सीमा के आसपास पहुंचा दिया या उसके नीचे ढकेल दिया। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 17% परिवार, 17% परिवार की बात कर रहे हैं हम, 17% परिवार के लिए यह जो OOPE है विनाशकारी सिद्ध होता है, विनाशकारी। और एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि ये जो स्वास्थ्य का खर्च बढ़ता चला जा रहा है इसके कारण बहुत से परिवार अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल कर ही नहीं पाते, किसी तरह से ले देकर के अपना पेट भर लेते हैं। और गांव में तो यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है, ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बुरी स्थिति है, क्योंकि वहां तो जो सरकारी अस्पतालों के जो हाल हैं उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि सरकार इसके लिए कितनी कोशिश कर रही है। आयुष्मान भारत है, जन औषधि परियोजनाएं शुरू हो गई हैं, सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि इन्हें जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत, पूरी तरह से लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से आयुष्मान भारत भी अपने आप में एक स्कैंडल बन गया है, अस्पतालों की मिलीभगत के कारण इस योजना का क्या हाल हो रहा है, आप पढ़ते हैं इस तरीके से। फिर हमारे यहाँ जो दूसरी तरह की बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेज हैं, ये गैर संक्रामक रोग हैं, ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तपेदिक और मलेरिया जैसी जो संक्रामक बीमारियां हैं हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अब जो सवाल आता है वो ये कि किया क्या जाए। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आप सोचने की स्थिति में नहीं होंगे। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य पर खर्च होता है वो बहुत कम होता है GDP का, उसे बढ़ाया जाए। जन औषधि केंद्र का जो हमारा नेटवर्क है उसे और स्ट्रांग किया जाए। जन औषधि केंद्र के बारे में आपको मालूम होगा, वहां जेनेरिक मेडिसिन मिलती है और दवाइयां बहुत सस्ते रेट में मिलती हैं। जो सामान्य दुकानों में जो दवाइयों के रेट होते हैं उन्हीं दवाइयों के रेट जन औषधि केंद्र में काफी कम होते हैं, लेकिन इसके जो शॉप हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वो बहुत कम है, इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो है उनके आसपास के लोग उनका फायदा उठा लेते हैं, बाकी लोगों को तो फिर उन्हीं दवाई की दुकानों में जाकर के महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। जो हमारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है वहां जो डॉक्टर्स हों, वहां जो खासकर जो चिकित्सा कर्मी हों वे बकायदे ट्रेंड हों और पर्याप्त संख्या में हों, ताकि लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा इन सरकारी अस्पतालों पर हो सके। ये सब कुछ उपाय आप सुझा सकते हैं। और जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तो प्री एग्जामिनेशन में जो विकल्प दिए जाते हैं उनमें से सही विकल्पों तक पहुंचने की स्थिति आपकी मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, चक्रपाणि तिवारी, हबीब खातून पश्चिम बंगाल से, श्रद्धा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, राजेश गुप्ता कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, अबू होरेरा बांसवाड़ी बिहार से, शिखर सोनी सासाराम बिहार से, और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।